संगमयुक्त जीवन मुक्त स्थिति। ये संगमयुग को हम कहते हैं हृदय तुल्य जीवन, है ना, हृदय तुल्य युग कहते हैं। और इसमें हमारी मुक्त अवस्था अर्थात जीवन में रहते सभी विकारों से मुक्त हमारी अवस्था, और जीवन मुक्त अवस्था अर्थात इस जीवन में रहते सभी बंधनों से मुक्त, देह के सभी संबंध और देह के पदार्थों से मुक्त, देह के स्वभाव संस्कारों से मुक्त। अर्थात हम ऐसी स्थिति जिसे हम कहें सत्युग में स्थिति हमारी होती है, हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी जो हमारी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति का अनुभव कैसे करें, हमेशा अतीन्द्रिय सुख और आनंद की स्थिति का अनुभव कैसे करें, इसमें हम जैसे हम गहराई में चलेंगे अभी। तो सत्युग में हमारी अलग अचीवमेंट्स हैं, सत्युग में अलग प्राप्तियां हैं, सत्युग का वर्षा अलग है, संगमयुग का वर्षा क्या है। कहते ना बाप से, अगर बाप आज की कल की मुरली में भी था, अगर बाप को हम याद करें तो अभी वर्षा मिलेगा, है ना, तो वो वर्षा तो भविष्य में मिलेगा, राजाई का वर्षा भविष्य में होगा, कि तो अभी का वर्षा क्या है। आज इस बात को हम गहराई समझेंगे कि इसमें मुक्ति क्या है, अगर हम कौन सी हमें प्राप्ति हो जाए तो हम अपने को मुक्त महसूस करेंगे, इस दुनिया के बंधनों से मुक्त महसूस करेंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे, और अगर हम और कौन सी प्राप्ति हमें हो जाए तो हम इस जीवन में रहते हुए ये ब्राह्मण जो हमारा जीवन है, सबसे ऊंचे से ऊंचा जीवन है, हीरे तुल्य हमारा जीवन है, इस जीवन में कैसे हम वो अवस्था जीवन मुक्त अवस्था के, जैसे पुरानी दुनिया में रह रहे हैं, किंतु तो पुरानी दुनिया में भले कमल हम कीचड़ में हमारे पैर तो हैं, क्योंकि हमारी हमारा ओरिजिन तो कीचड़ से ही हुआ है, हम उसी परिवार में रहते हैं, अपने घर परिवार में रहते हुए जिम्मेवारी को संभालते हुए नौकरी करते हुए, किंतु वो उसमें भी रहकर जैसे कमल पुष्प के समान न्यारे प्यारे कैसे रहें, ऐसा कैसे फील हो कि जैसे हम सचमुच यहाँ रहते हुए सूक्ष्म वतनवासी हैं, हम बाबा की गोद में हैं। जैसे आज की मुरली थी ना, संगमयुगी स्वराज्य अधिकारी, संगमयुगी स्वराज्य स्वराज्य की दरबार, अपने सदा ही जैसे बाबा ने कहा दो लाइट का ताज, लाइट का ताज और विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, वो सदा ही हमारे सिर पे रहे, हम सदा उस स्थिति में रहे, वो कैसे हमारी स्थिति बने, आज उस बात पे हम गहराई से चिंतन करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि जैसे ही बाबा आए, आज से 80 साल पहले बाबा आए, शिव बाबा की पधरामनी हुई, तो उन्होंने आते ही दो चीजों की स्थापना की, पहले तो एक सूक्ष्म वतन की स्थापना की। दो वतन तो हम जानते हैं, एक वतन तो ये है साकार वतन, पांच तत्वों की दुनिया जिसमें हम मनुष्य रहते हैं, जिसमें हम आत्माएं ये पांच तत्वों का बना हुआ शरीर धारण करके हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, उसमें चार युग सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग और एक युग लास्ट का संगमयुग, जिसमें शिव बाबा जब आते हैं उस संगमयुग की स्थापना, बाबा के आते ही संगमयुग शुरू हो जाता है, किंतु संगमयुग आने से भी पहले बाबा एक सूक्ष्म वतन की स्थापना करते हैं, साकार वतन और आत्माओं का जो वतन मूल वतन है उसके बीच में। वो बेसिकली वो वतन क्या है, मैंने काफी इसके मूल्यों पे अध्ययन किया, व्यक्त मूल्यों पे अध्ययन किया, साकार मूल्यों का भी अध्ययन किया। तो बाबा का सूक्ष्म वतन क्या है, बाबा ने जैसे होता है माँ बाप के दिल में बच्चे का सूक्ष्म छोटा सा रूप, जब बच्चा एकदम छोटा सा था, जब पैदा हुआ, क्योंकि माँ बाप जानते हैं बच्चे को जिस दिन से पैदा हुआ, तो बच्चों का सत्व प्रधान स्वरूप होता है शुरू में। बाबा भी कहते हैं बच्चे शुरू शुरू में कैसे होते हैं, एकदम महात्मा के समान, सातों गुणों से भरपूर, तो उनकी सत्व प्रधान अवस्था होती है बच्चों में। ज्ञान भी जैसे बच्चे छोटे बच्चे को देखे ना, अगर पैदा 3 महीने का बच्चा, 2 महीने का, 1 महीने का बच्चा, वो ऐसे बुद्धू नहीं लगता है, लगता है समझ है उसको, ज्ञान है, पवित्र होता है ना, शांति उसके अंदर दिखाई देती है, रूहानी प्यार दिखाई देता सबके लिए, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति से भरपूर होता है, आनंद की शक्ति से भरपूर होता है और सर्वशक्तियों से भरपूर होता है। बाप अगर थका हुआ घर पे आता है, उस बच्चे को देखते ही, या उसकी माँ थक जाती काम करके, उस बच्चे को देखते उसकी सारी थकावट उतर जाती है, मतलब ऐसा साक्षात्कार स्वरूप होता है बच्चे का, होता है कि नहीं होता है, सभी अनुभवी है ना, बच्चों को देख के कैसा लगता है, किसी का बच्चा हो चाहे काला हो गोरा हो कैसा भी बच्चा हो, वो बच्चे को देख के सारा दिन काम किया हो आपने, कैसा लगता है? सारी थकावट एकदम खत्म हो जाती है ना। तो सत्व प्रधान स्वरूप होता है, तो माँ बाप के दिल में सत्व प्रधान स्वरूप बच्चे का होता है। ऐसे शिव बाबा के दिल में कौन दिल, शिव बाबा का दिल क्या है? हम सुनते हैं शिव बाबा का दिल तक, शिव बाबा के दिल में बैठ जाओ जाके, है ना, शिव बाबा के दिल तक नशीन बनो। जो अकाल तक नशीन होगा, अभी जो आत्मा अकाल तक नशीन होगी, वो आत्मा ही बाबा का दिल तक नशीन बन सकती है। दिल, दिल माना क्या? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस। शिव बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, रूहानी प्यार का सागर है, अतीन्द्रिय सुख का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तियों का सागर है। वो सातो एनर्जी भरपूर है उसके अंदर। सागर कितना होता है? सागर में कितने लीटर पानी होता है? 100 लीटर, 500 लीटर, ना? कितना होगा, कितना बड़ा होगा ना। तो शिव बाबा का दिल कितना बड़ा होगा सोचो। शिव बाबा क्या है? दिल किसे कहते हैं? जहां पर ये एनर्जी सबसे अधिक होती है। आत्मा का दिल कितना बड़ा है? आत्मा, आत्मा का ये दिल तो शरीर का दिल है, आत्मा का दिल कौन सा है? ये बुद्धि ही आत्मा का दिल है, जहां पर सबसे ज्यादा ये एनर्जी है। ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान कहां होता है? बुद्धि में होता है ना। पवित्रता कहां होती है? बुद्धि में होती है। शांति कहां होती है? बुद्धि में होती है। रूहानी प्रेम कहां होता है? अतीन्द्रिय सुख कहां, आनंद कहां, शक्तियां कहां? बुद्धि में होती है। तो ये आत्मा का दिल जो है बेसिकली ये बुद्धि ही है। सर्वशक्तियां कहां है? बुद्धि में है। तो ये आत्मा का दिल बुद्धि है। और बाबा का दिल कहां है? इसलिए बाबा को कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि, है ना। शिव बाबा क्या कहते हैं? बुद्धिमानों की बुद्धि। तो शिव बाबा सागर है साथ, वो कितना बड़ा दिल होगा उसका? तो बाबा का दिल तक कितना बड़ा है? बाबा कहते हैं मेरे दिल तक पे मेरी आज्ञाकारी, आज्ञाकारी वफादार ईमानदार फरमानदार सपूत बच्चे मेरे दिल पे सदा ही रह सकते हैं, सो भी सकते हैं, सैर भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, अपने घर ऑफिस का काम भी कर सकते हैं। मेरे ऑफिस में अपने दिल तक पे सदा ही है वो बच्चे, सदा ही मेरे दिल तक नशीन है। सच्चे दिल पर साहब राजी, है ना, आज की मुरली में भी था। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं, सच्ची दिल माना, सच्चे दिल माना क्या? जिस बच्चे के दिल में ये जो ज्ञान है ना, जो बाबा ज्ञान देता है, बाबा का ज्ञान का सार क्या है? बाबा के सार रूप में बाबा चार बातें हमें बताता है। एक तो आत्मा का परिचय हमें देता है, एक बच्चे तुम स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हो, जो दोनों भृक्टियों के मध्य, और ये दो ब्रेन है हमारे, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, और उसका मध्य, उसका कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस, बिल्कुल यहां दोनों ब्रेन का, राइट लेफ्ट का दोनों का मध्य यहां पर है, और उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और वो आत्मा की सीट है। हाइपोथैलेमस में ही आत्मा की सीट है, आत्मा वहीं बैठती है, है ना। तो यहां आत्मा बैठी है, लगभग 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, यहां से 3 इंच नीचे, और यहां से 2.5 इंच अंदर, एक अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। तो जो आत्मा है, उस आत्मा सात एनर्जी निकल रही है। ये सात एनर्जी कौन सी है आत्मा की? ज्ञान है, पवित्रता है, शांति है, रूहानी प्यार है, अतीन्द्रिय सुख है, आनंद है, और शक्तियां हैं, 8 शक्तियां जो होती हैं। तो ये सात एनर्जी निकल रही हैं, और ये सेंस, ये जो हाइपोथैलेमस की कोशिकाएं हैं, इसको सेंस करती हैं, और वो कोशिकाएं सारी यहां से फैलती हुई एनर्जी, फैलती हुई एक्चुअली यहां पर वो एनर्जी मानसिक ऊर्जा में बदल जाती है। ये आध्यात्मिक, आत्मिक ऊर्जा है सात एनर्जी। और वो एनर्जी, जैसे आपने देखा होगा भाखड़ा डैम है या नर्मदा डैम है, तो वो जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है 350 फुट से, तो नीचे टर्बाइन्स लगे होते हैं, और जैसे टर्बाइन्स से पानी आके टर्बाइन्स पे गिरता है ऊपर से, तो टर्बाइन चालू हो जाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बिजली जनरेट होती है, और वो बिजली को फिर डायनामो में भर लिया जाता है। बड़ी बड़ी डायनामोज होती हैं, वो डायनामो में भर के वहां से हाई टेंशन वायर्स जाते हैं, 22,000 वोल्ट के तार जाते हैं अलग अलग शहरों के पावर हाउस में, अलग अलग स्टेट के पावर हाउस में। तो फिर वहां से बड़े पावर हाउस में जाती है, फिर वहां से उस पावर हाउस से 11,000 वोल्ट की तारें छोटी सिटीज में जाती हैं, शहरों में जाती हैं, और उन शहरों में से फिर उनके पावर हाउस से 1100 वोल्ट की तारें हमारे घरों के पास जो तार होते हैं ना बिजली के, उसमें आती हैं, और फिर वहां से ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, फिर 220 वोल्ट की तार से हमारे घर में बिजली आती है। उसमें हम बिजली से क्या क्या करते हैं? बल्ब जलते हैं, ट्यूबलाइट जलती हैं, पंखे चलते हैं, एसी चलता है, फ्रिज चलता है, हीटर चलता है, इंडक्शन प्लेट चलती है, और क्या क्या चलता है, कंप्यूटर, सभी कुछ तो चलता है ना, नहीं? सारा काम किससे होता है? कितने घर का सारा काम होता है, नहीं होता है? इंडस्ट्री चलती है, ट्रेन चलती है ना, कि सब कितना काम होता है ना। ऐसे ही जो आत्मा की एनर्जी है यहां पर, ये सात एनर्जी यहां से तुरंत कन्वर्ट हो जाती है मानसिक ऊर्जा में। मतलब मानसिक ऊर्जा क्या है, उसको हम कहते हैं टीम। आत्मिक ऊर्जा जो है वो बेसिकली ज्ञान क्या है, सार रूप में तो बाबा चार बातों ज्ञान देने को बताया, क्या देता है? पहला ज्ञान देता है कि वो ABCD, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, अपना परिचय देता है, बी परमात्मा, सी संबंध, कनेक्शन, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, मुख्य नौ संबंध की हमें अनुभूति होनी चाहिए सभी को, ऐसे तो उसके साथ हमारे सर्व सर्व संबंध है, जो चाहो संबंध निभा सकते हो, क्योंकि तो एक संबंध, नौ संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन संबंधों की गहरी अनुभूति करना ही राजयोग है, उस अनुभूति में रहना ही राजयोग है, एक एक संबंध की अनुभूति होना, जैसा समय वैसा संबंध, है ना, जैसा जैसी जैसा जैसी जगह वैसा संबंध, जैसी आवश्यकता वैसा संबंध बाबा से निभा सकते हैं। तो एक तो मां का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सतगुरु का संबंध, बंधु, बंधु माना बड़े भाई का संबंध, सखा, सखा माना दोस्त का संबंध, साजन, साजन माना पति कहे या सबसे सबसे प्यारा, मोस्ट बिलेवेड, है ना, हम सब सबसे प्यारी चीज क्या है, हमारा शिव बाबा है ना, मोस्ट बिलेवेड साजन के रूप में। और सर्जन, सर्जन माना जो हमारा डॉक्टर, जो आत्मा, कौन सी बीमारी लगी है, कौन कौन सी बीमारी आत्मा को लगी है बताओ, आत्मा को चार बीमारी लगी हुई है ना, पहली सबसे बड़ी बीमारी देहभान की बीमारी है, देहभान रूपी बीमारी, बॉडी कॉन्शियसनेस आत्मा में घुस गया है ना, बहुत गहरा घुस गया। दूसरा देह के संबंधों का भान, देह के संबंध जो है ना, देह के संबंध, संपर्क, खाली संबंध नहीं, का संपर्क भी, जिनसे हमारा कनेक्शन होता है, बिजनेस कनेक्शन है हमारा, ऐसा लेन देन का कनेक्शन है, वो भी हमारे दिल में चले गए, बुद्धि में चले गए, दिल में, आत्मा के दिल में चले गए, बुद्धि में चले गए, तो वो भी हमारे अंदर चला गया है। देह के संबंध, संपर्क और देह का स्वभाव, देह का स्वभाव क्या है, पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये देह की नेचर है, देहवान की नेचर है। और देह के संस्कार, आलस करना, अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालना, बदला लेने की भावना रखना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, डरना, हर बात में जल्दीबाजी करना, प्रेशर में रहना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, और ईर्ष्या करना, ये 10 जो है देह के, देहवान की आदतें हैं, या कहें संस्कार हैं। और देह के पदार्थ जो हमारे सामान है ना, घर में होता है, बिजनेस में होता है, दुकान में, घर, कार, जायदाद, पैसा, वो भी हमारे दिल में चला गया, आत्मा के दिल में चला गया, वो चार कीड़े जैसे आत्मा में लग गए, और उन्हीं की हमेशा याद आती रहती है, जो दिल में होता है उसकी याद हमेशा रहती है, दिल में अर्थात जो बुद्धि में मेरे हैं उसकी याद आपको भूलती है कभी, क्या बताओ, ये कभी अपनी देह की याद भूलती है क्या, भूलती कि नहीं भूलती, बोलो बताओ, देह की याद रहती नहीं रहती, थोड़ा सा कहीं कुछ हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, डायबिटीज हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, पेट में दर्द हो रहा हो, क्या होता है, घुटने में दर्द हो रहा हो, याद रहता नहीं रहता, याद रहता नहीं रहता, बताओ याद रहता है, कोई संबंधी बीमार हो जाए तो, आपका बेटा बीमार हो, है ना, वाइफ बीमार हो, बेटी बीमार हो, किसी कुछ हो गया हो संबंधी को, किसी से पैसे लेने हो, याद रहता है नहीं रहता है, याद रहता है ना। और देखिए आप पदार्थ, जो प्रॉपर्टी है, मकान है, चीजें हैं, पैसा, याद रहता है नहीं रहता है, उससे योग लगाना पड़ता है कि अपने आप याद रहता है, बताओ कुमार, बताओ कुमारों को याद रहता है, कुमार हाथ उठाओ, कुमार जो बैठे, हाँ बैठ, बहुत अच्छा, तो याद रहता नहीं रहता और देह का स्वभाव, अच्छा बता, क्रोध करना नेचुरल है क्या, नेचुरल है, कोई आपको कुछ कह दे तो क्रोध आएगा नहीं आएगा, कोई आपसे गलत बिहेव करे, गाली दे, आपकी बुराई करे तो क्रोध आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं, क्रोध आएगा नेचर, क्योंकि हमें आदत पड़ी है, 25 साल की आदत पड़ी है हमको, 25 साल के हमें नेचर बन गई, देहभान की नेचर ही है। जैसे आपकी नेचर क्या है, गर्मी, ऐसे देहभान अगर आप बॉडी कॉन्शियस में है, रोल कॉन्शियस में है, तो गुस्सा आएगा, है ना। काम विकार, अकाम विकार ना, देह का आकर्षण, बुद्धि जाएगी किसी के शरीर पर, इसके ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये काम विकार है ना, क्रोध, लोभ, नामांशन की इच्छा होगी, इसको पूछ रहे मेरे को क्यों नहीं पूछा, लोभ है ना, मोह, अटैचमेंट है ना, लगाव झुकाव आएगा ना, प्रभाव आएगा ना, यही मोह है ना, अहंकार, जो कुछ मेरे पास है, डिग्री है, मैं बड़ा डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इतने पैसे वाला हूं, इतना समझदार हूं, है ना, अहंकार आएगा नहीं आएगा? ये हमारी आदत बन गई है, ये हमारी नेचर बन गई है। आलस आएगा नहीं आएगा? दे समझेंगे तो अलबेलापन, तो ये जो है हमारी बुद्धि में फंसे हुए, दिल में फंसे हुए, तो चार चीजें हमारे दिल में फंसी हुई है, राइट। और ये जो है हमारे, ये कब से फंसे, 2500 साल से, जब से हम देहभान में आए, जब से बॉडी कॉन्शियस हुए ना, तो ये जो है, जो सार रूप में जो ज्ञान है, ए बी सी, तो आत्मा, परमात्मा और हमारा कनेक्शन, संबंध क्या क्या है, मैंने बताया, माँ बाप, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा, लास्ट कनेक्शन है बच्चा। तो नौ संबंधों से, क्योंकि सब कुछ उसको दे देते हैं हम। आज मुरली में भी था ना, तन मन धन, तन कैसा है हमारा, अभी का तन कैसा है, रोगी है ना, सिल पामा के सिल सिल के गाड़ी चलाते हो ना, कपड़े के सामान सिलते रहते हैं, कभी यहां ऑपरेशन करें, कभी यहां पर, कभी गोली खाएंगे तो बीमार, रोगी तन है ना, है ना। और मन कैसा है, कमजोर तन मन है, शक्ति नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें फील हो जाती हैं, रोना आता है, सहन नहीं होती बातें, है ना, तो मन कमजोर है। और धन कैसा है, काला धन है। आज बाबा की मुरली याद है, नहीं याद है, आज की मुरली में था ना काला धन, है ना। तो बाबा को ये हम क्या देते हैं, ये बाबा के हवाले, जैसे अपने बच्चे को प्रॉपर्टी बिल कर देते ना, तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, यही तन है पुराना सा, मन है गंदा सा और धन है काला दुख देने वाला, तो बाबा को सब कहते हैं बाबा ये सब तुम्हारा नहीं। तो ये जो है सारा हम तन मन धन उसको बिल कर देते हैं, तो बच्चा हो गया ना। और फिर ये संसार रूपी ड्रामा क्या है, डी फॉर ड्रामा, इस संसार रूपी नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, और परमात्मा इसका, इस संसार रूपी ड्रामा में हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। कैसा पार्ट प्ले कर रही है, एक्यूरेट के नहीं। और शिव बाबा इसका क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है और सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, किसने दुख दिया, धोखा दिया, इंसल्ट की, ग्लानी की, मेरे पैसे ले ली वापस नहीं किए, बिजनेस में मेरे साथ चीटिंग कर ली, किसने बहुत गलत काम किया मेरे साथ, तो वो गलत नहीं किया है, मेरे ही अपने कर्मों का हिसाब किताब है। हिसाब किताब क्या होता है, अगर 100 साल पहले मैंने किसी 10 रुपया उधार लिया था, 100 साल पहले मेरा पिछले जन्म में, और मेरा दोस्त था वो, इस जन्म में क्या हो गया, इस जन्म में मान लो मेरा कुछ बन के आ गया, मेरा बिजनेस पार्टनर बन के आ गया, या पत्नी बन के आ गया, या पति बन के आ गया, या बच्चा बन के आ गया, या पड़ोसी बन के आ गया, है ना, इस जन्म में क्या होगा, मुझे उसको वापस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। हिसाब किताब 10 रुपया तो होगा मूलधन, और ब्याज कितना हो गया, एक बार हिसाब लगाया था हमने तो उसका ब्याज आप सोच के आश्चर्यचकित हो जाएंगे सुन के, 4,19,00,000 रुपया हो जाता है ब्याज, हिसाब लगाना, 4,19,00,000 रुपया है ना, 10 रुपए का ब्याज, ये कर्मों का हिसाब किताब है। सोचो आपने किसी व्यक्ति की 100 साल पहले इंसल्ट की थी, तो अब कितनी बार इंसल्ट सहनी पड़ेगी, सौ साल के बाद वही आपका संबंधी बन के आएगा, दोस्त बन के आएगा, बेटा बन के आएगा, माँ बाप बन के आएंगे, भाई बहन बन के आएंगे, पड़ोसी बन के आएगा, नौकर चाकर बन के आएगा, बॉस बन के आएगा, साथी बन के आएगा, ऑफिस में काम करने वाला। कितनी बार इंसल्ट सहन करनी पड़ेगी, एक बार ग्लानी की थी कितनी बार सहनी पड़ेगी। तो ये है कर्मों का हिसाब किताब। तो इसने जो भी किया है, इस ड्रामे में कोई दोषी नहीं है, इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। बीमारी कहां है, 90% विचार हमारे पास्ट से आते हैं, पास्ट की जो हमारे साथ जो लोगों ने किया, पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स और भविष्य की इनसिक्योरिटीज, 90% विचार वहां से आते हैं। कहते हैं आजकल 30 विचार एक मिनट में आते हैं, तो 30 से 27 विचार कहां से आ रहे हैं, पास्ट से आ रहे हैं या भविष्य से आ रहे हैं। सिर्फ 3 विचार वर्तमान से आ रहे हैं। तो ये जो है ये है 30 विचार माना अशांति और 3 विचार माना शांति। तो जितना हम इस एबीसीडी को, ये बाबा की मुरली क्या है, आज की मुरली सुनो कल की मुरली सुनो, ये बाबा की मुरली में क्या बातें होती हैं, ये 4 बातें ही होती हैं। आत्मा के बारे में परिचय होता है, परमात्मा के बारे में परिचय होता है, और आत्मा परमात्मा के संबंध, कभी बाबा बाप टीचर सदगुरु की बात करते हैं, कभी सखा की बात करते हैं, साजन की बात करते हैं, है ना, कभी बड़े भाई की बात करते हैं बंधु की, कभी सज्जन के बारे में बताते हैं, है ना, कभी कहते हैं मुझे अपना वारिस बना लो, बच्चा बना लो, है ना। और ड्रामा सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान होता है। तो बाबा यही 4 बातों को डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट लहरों में ला करके, सहज करके, रमणीक तरीके समझाते। तो जितना हम इस चारों मुरली का, मुरली जो है बाबा की जो मुरली है, जितना इसका गहराई से मनन चिंतन मंथन करते जाते, मनन मनन रिवाइज करते, जैसे आज की मुरली हमने सुनी, उसको रिवाइज करो मन मन में, चिंतन माना गहराई में जाओ, मुझे ये बनना है, फिर मंथन माना कैसे बनना है, कैसे बनूं, बाबा मुझे बताओ मैं कैसे बनूं, मेरे को ये काम करना पड़ता है, मैं तो यहां पर काम करता हूं, मैं तो ऑफिस में काम करता हूं, मैं तो, मेरे को ये साधन ये काम करना पड़ता है, है ना, तो मैं कैसे करूं, इसका मतलब क्या है, कैसे मैं इसको अप्लाई करूं, मंथन। फिर जो मक्खन निकला उसको सिमरण माना, उसको कार्य में लगाओ, हर चीज का मत, हर चीज का एक, क्योंकि ये मुरली के जो पॉइंट्स हैं बाबा के, जो मुरली में 7 बातें, हर पॉइंट में, हर महावाक्य में 7 बातें होती हैं। पहली बात क्या है, पहली बात है गुह्यता। मुरली का हर महावाक्य बहुत गुह्य है, माना बहुत गहराई है उसमें। दूसरा, इसमें राज बहुत समाये हुए, राजयोग, मतलब बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इसमें, इस मुरली के हर महावाक्य में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, क्योंकि ये मुरली बाबा की मुरली, बाबा के इसमें 15 से 20 लाख बच्चे हैं, हर 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 एक बच्चे की हर समस्या का समाधान उसमें है, हर समस्या का। आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी समस्या हो, घर की, प्रोफेशन की, किसी तरह की समस्या हो, शरीर की, उसमें उसका सलूशन लिखा हुआ। कोई मुरली आप उठा लो और उसको जरा पढ़ लो, उस पर बार बार उसको मनन कर लो, चिंतन गहराई में चले जाओ, मंथन, बाबा से पूछो, बाबा ये मुरली, ये पोली का पॉइंट, मेरे को दर्द हो रहा हार्ट में, मैं क्या करूं, मेरे को सिर में जोर से दर्द हो रहा, मैं क्या करूं, मेरे टांग में दर्द, में चला ही नहीं जा रहा, बाबा मैं क्या करूं, मेरे आप इलाज करो ना। तो उसमें उसका इलाज है, बाबा आपको बताए, टच करेगा, बच्चे इस पॉइंट का मतलब ये है, तुम ऐसे करो ठीक हो जाएगा। बाबा मेरे घर में बहुत टेंशन, मेरा बॉस मेरे को बहुत डांट मार रहा है, मेरे बॉस ने मेरे को धमकी दी है, मैं क्या करूं, उसमें उसका इलाज है, उसी मुरली में। कोई भी मुरली, जादू जादू है मुरली में, जादू कहते हैं मुरली में, खुदाई जादू है, है ना। प्रैक्टिकली आप करके देखो, मैं तो बहुत सालों से करके देखता हूं, मेरे पास तरह तरह के मरीज आते हैं, ऐसे मरीज आते हैं जो कभी भी मर सकते हैं, है ना, हार्ट के पेशेंट सब, आर्टरीज ब्लॉक, बाईपास भी फेल हो गए, एंजियोप्लास्टी भी फेल हो गई, कोई डॉक्टर उसको टच करने को तैयार नहीं, ऑपरेशन करने को उसका तैयार नहीं होता है, यहां पर अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं, फिर हमारे प्रोग्राम में आते हैं हमारे पास, फिर देखो बाबा कैसे उनको ठीक कर देता है, उनके ब्लॉक भी खुल जाते हैं, उनकी हार्ट की पंपिंग भी बढ़ जाती है, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है, डायबिटीज भी कंट्रोल में आ जाती है, दवाई भी छूट जाती है कई बार, है ना। माइग्रेन भी ठीक हो जाता है, अस्थमा भी ठीक हो जाता है, एसिडिटी भी ठीक हो जाती है, टेंशन डिप्रेशन भी खत्म, नींद आने भी शुरू हो गई, सालों से तकलीफ होती थी नींद नहीं आती थी, अब नींद भी आनी शुरू हो जाती है। कैसे होता है? ये मुरली से होता है। तो मुरली का हर एक के लिए इसका अलग मतलब है, बाबा आपको बताएगा। मंथन सिमरन उसको फिर याद रखो, कार्य करते समय कार्य में लगाओ मंथन। तो जितना इस मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाओगे उतना मगन होती जाएगी बुद्धि बाबा में। तो बेसिकली राजयोग मेडिटेशन क्या है? ये जो बाबा की गिफ्ट है, बाबा अभी हमको ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहा है संगम पर। तो संगम पर जो मैं आप शुरू में मैंने व्हाट्सएप पर बात की थी, तो ये सात गुण जो है आत्मा के कैसे बनते हैं और कैसे हमारी इससे संगम की मुक्त अवस्था और संगम की जीवन मुक्त अवस्था कैसे प्राप्त होती है, इसको हम गहराई से भी लेते हैं, कैसे वो अवस्था हमारी बने। तो जैसे ये दिल आत्मा का दिल है, ऐसी परमात्मा का दिल, मैंने तब बहुत बड़ा दिल तख्त है, अब जो है परमात्मा का दिल तख्त है, यही एक्चुअली सूक्ष्म वतन है। जैसे माँ बाप के दिल पे छोटे बच्चे का स्वतः प्रधान स्वरूप होता है, बच्चा और बड़ा होता है 7 साल का स्कूल में जाता है, वो भी स्वरूप उसके अंदर होता है। जब 30 साल का हो गया, आप कहना नहीं मानता, शादी हो गई, या बड़ा हो कहना नहीं मानता, विकारी हो गया, गंदी आदतें पड़ गई, वो स्वरूप भी रहता है। कि तुम माँ फिर क्या, माँ फिर भी क्या देखती है बच्चे का, कौन सा रूप देखती है? बच्चा बड़ा हो गया, अभी कहना नहीं मानता है, किंतु उसको देख के क्या करती है बार बार, उसको कौन सी बात याद आती है बच्चे को देख के? उसको वही बच्चे वाला स्वरूप याद आता है। इसलिए कभी कोई कहता है ना उसको, तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया, तो माँ क्या कहती है, अरे मेरा बच्चा तो चींटी को नहीं मार सकता, तुम कहते उसने उसको मार दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे ऐसे ही हम शिव बाबा को हम कैसे नजर आते हैं? देवता ही नजर आते हैं, है ना। परम धाम में जैसे ज्योति बिंदु चमकते सितारे थे, और सत्ययुग में कैसे थे हम? एकदम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म थे हमारा। किसी को हम न काम विकार कांश था, न क्रोध कांश था, न लोभ का, न मोह का, न अहंकार, किसी विकार कांश नहीं था वो, उन्हें तो अलग बात है, अंश तक नहीं था, लाइट का ताज था, रतन जड़ी ताज था। बाबा उसको वो स्वरूप देखता है हमारा, इसलिए वो क्या कहता है, वो अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप बोल के क्या बोलता है, मीठे मीठे बच्चे, अभी का स्वरूप देख के नहीं बोलता है। तभी उसको देखते ना बच्चा जैसे मीठे मीठे बच्चे, तभी हमको बोलता है मीठे, माना ही क्या सत्व प्रधान, मीठा शब्द है ना, उसका अर्थ क्या, सत्व प्रधान, सातों गुणों से भरपूर। तो बाबा हमारा सत्व प्रधान स्वरूप देखता है, परमधाम वाला और सत्ययुग वाला, त्रेता वाला, अभी का स्वरूप नहीं देखता है बाबा हमारा। और बाबा ये ज्ञान सुना के हमको वापस सातों गुणों से भरपूर करता है। बाबा सातों गुणों का सागर है, पावर हाउस है, और मेरे पास 7 गुण खत्म हो गए। तो ये जो बाबा का दिल तख्त है ना, जो सातों गुणों से भरपूर, तो बाबा का ये दिल है, उस दिल में जाके सब अभी तक सिर्फ एक ही बच्चा बैठा है। कौन बैठ गया जाके वहां, उसके दिल में जाके कौन बैठ गया? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने बाबा की, शिव बाबा की श्रीमत पे चल करके 100% चल के अपनी बुद्धि को सत्व प्रधान बनाया, सातों गुणों से भरपूर किया, और अपने मन को भी सत्व प्रधान बना दिया, संस्कारों को भी सत्व प्रधान बना दिया, उसकी आज्ञा पे चल के, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार, सपूत बच्चा बन के शिव बाबा का उसने, वो कहां बैठ गया अभी जाके, बाबा के दिल तक पे बैठा हुआ, सूक्ष्म वतन में बैठा हुआ। और मुझे क्या करना है, फॉलो फादर, माना अब ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया कॉपी करना है सिर्फ, जैसे आज की मुद्रा में भी था ना, कदम पे कदम रखना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसा ही करना है 100%। जैसे ब्रह्मा बाबा ने आज्ञा, बाबा की जो आज्ञा मानी, दही मानी बनने की, पवित्र रहने की, बी होली बी योगी, है ना, पहले दिन से पवित्र और पहले दिन से योगी, सदा सोल कॉन्शियस रहने की, है ना, जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बाबा ने बताई थी, शिव बाबा ने जो बताई, एक्यूरेट उन पे चला, ईमानदार रहा, वफादार, माने एक बाबा दूसरा ना कोई, किसी दुनिया को देख के डरा नहीं, घबराया नहीं, बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई, बेकरी पार्ट भी आया, बाबा कभी डरे नहीं, घबराए नहीं, 380 بچوں کی پالنا کرنا, آپ کے دو بچے چار بچے ہو کتنا مشکل ہوتا پالنا کرنا, یگے میں ایک پیسہ نہ ہو اور پھر بھی بابا گھبرائے نہیں کہ بچوں کو لنچ دینا, کیسے بچوں کو لنچ دیں گے, بچوں کو دوپہر کا کھانا کیسے کھلائیں گے, پیسے نہیں ہیں, تو بابا کبھی گھبرایا نہیں, بابا نے کیا, شیو بابا نے سب کچھ کیا, ہے نا. اتنا نشچے بدھی, اتنا وفادار, ایک بابا دوسرا نہ کوئی, کسی سے مانگا نہیں, ہے نا, ایماندار, ہر سنکلپ ہر بول ہر کرم اپنا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک سانس ایک ایک سنکلپ بابا کی شریمت پہ کیا, وہ ہے ایمانداری اور فرمان بردار. دیہے دے کے سب سمبندھ سمپرک دے کے سبھاؤ سنسکار دے کے پدارتھوں کو بدھی سے نکال دیا, دل سے نکال کے اپنے کو آتما نشچے کر نرنتر پرماتما کی یاد میں رہے, شیو بابا کی یاد میں رہے. دو بجے اٹھ کے یوگ کرتے تھے بابا, اور سارا دن دیکھو تو سارا دن بابا کی یاد میں رہتے تھے. ایسے ہی مما کرتی تھی, ایک بار مما سے کوئی بھائی جا رہے تھے, ہمارے جو نربھے بھائی نا وہ جا رہے تھے پیچھے, اور رمیش بھائی بیٹھے تھے تو پیچھے کار میں تھے, مما آگے بیٹھے تھی, تو پیچھے سے کہا انہوں نے, ایک سامنے بورڈ تھا کوئی نا وہاں پر لگا ہوا تھا بورڈ, جیسے روڈ پہ ہوتے بمبے میں بورڈ لگے ہوتے نا, ایڈورٹائزمنٹ بورڈ ہوتے ہیں, تو مما کو پوچھا, مما آپ نے یہ بورڈ دیکھا, سی ڈی کا چتر بنا تھا نا, جب سی ڈی کا چتر بنا تھا تو آپ نے سی ڈی کا چتر دیکھا کیسے, ہم بھی ایسی سی ڈی بنائے کیا؟ تو مما کہتی ہے, میں ہمیشہ ہی سوکشم وطن میں رہتی ہوں, صرف جب آپ بچوں کو سنانا ہوتا تو میں نیچے آتی ہوں. تو یہ مما کے ماں باپ کے تھے, مطلب مما یہ نہیں دیکھتی بورڈ پہ کیا لکھا ہے, ادھر کیا لکھا ادھر کیا لکھا, نہیں, سدا ہی بدھی کہاں رہتی تھی, بابا کے دل میں, سدا ہی سوکشم وطن میں, سوکشم وطن بابا کا دل تک, کیونکہ آگیاکاری تھی مما بھی, وفادار تھی, ایماندار, فرمان بردار تھی, تو سدا ہی بدھی وہیں لگی ہوئی تھی, دل وہیں لگا ہوا تھا بابا کے دل میں, بھلے شریر تھا کیونکہ بدھی کہاں لگی تھی, بابا کے دل میں, ہے نا, سدا سوکشم وطن میں. تو یہ استھتی تھی ایسے مما بابا کو فالو کرنے کا. تو ابھی ہم چلتے ہیں آگے, تو یہ جو اے بی سی, تو راجیوگ کیا ہے, راجیوگ میڈیٹیشن مانا میں انگلش میں کہوں تو بینگ دا ٹروتھ, لیونگ دا ٹروتھ اور ریئلائزنگ دا ٹروتھ, مانا ستیہ بننا ہی راجیوگ میڈیٹیشن ہے, ستیہ جینا ہی راجیوگ میڈیٹیشن ہے, اور ستیہ انوبھو کرتے رہنا ہی راجیوگ میڈیٹیشن. ستیہ کیا ہے, ستیہ کی دو پریبھاشا میں دو باتیں آتی ہیں, ستیہ ایٹرنل ہوتا ہے, سدا ہوتا ہے, اویناشی ہوتا ہے, ستیہ کبھی مرتا نہیں, ستیہ کبھی پیدا نہیں ہوتا, ستیہ کبھی مرتا نہیں ہے. ہمارے اندر ایسی کیا چیز ہے جو کبھی مرتی, جو پیدا نہیں ہوئی کبھی مرے گی بھی نہیں, وہ کون سی چیز ہے ہمارے اندر, آتما. آتما اس شریر میں آنے سے پہلے بھی تھی, ابھی بھی ہے, اور مرنے کے بعد, شریر چھوڑنے کے بعد بھی کیا ہوگی, رہے گی کہ مر جائے گی, رہے گی نہ, وہ کبھی پیدا, آتما کا نہ کبھی پیدا ہوتی نہ کبھی مرتی ہے. دوسرا پرماتما شیو بابا کبھی پیدا ہوتا ہے, اوترن ہوتا ہے شیو بابا کا سنگم پر, تو پیدا نہیں ہوتا ہے, شیو جینتی, وہ اوترن کی جینتی منا, شیو اوترن کہتے ہیں نا, پیدا نہیں, وہ مرتا بھی نہیں ہے نا, پرماتما ستیہ ہے, اور دوسرا کبھی بدلتا نہیں ہے, جیسا ہے ویسا ہی رہتا, آتما جیسی تھی میں ایک سال کا تھا تو بھی ایسی چھوٹی بندو تھی, پیدا ہوا تو چھوٹی بندو تھی, ابھی بھی اتنی ہے, اور شریر چھوڑنے کے بعد 80 سال کا ہو جاؤں گا تب بھی ایسی ہوگی, ہے نا, دیوتا ہوں گا تو بھی ایسی ہوگی. تو یہ ہے آتما, آتما ستیہ ہے, پرماتما ستیہ ہے, اور آتما پرماتما کا سمبندھ ستیہ ہے, سی ستیہ ہے. دیہ کے سمبندھ بدل جاتے ہیں, ماتا پتا مر جاتے ہیں, بھائی بہن مر جاتے ہیں, پتی پتنی مر جاتے ہیں, بچے شریر چھوڑ دیتے ہیں, دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, کنتو ماتا, آتما اور پرماتما کا سمبندھ سدا ہی ہے, اور ہر سمبندھ ہے, ہر جگہ ہے, ہر سمے ہے. سمبند آپ کا, کوئی سمبند آپ کا ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ آدھی رات نہ ہو, 12 بجے نہ ہو, 1 بجے نہ ہو, کنتو پرماتما کو پکارو آدھی رات, کیا کرے گا, آئے گا نہیں آئے گا, بولو آئے گا نہیں آئے گا, ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے, ہر سمبند اور ہر जगह है, हर समय है और हर संबंध है। तो ये है सत्य है। दुनिया के संबंध सब असत्य हैं, झूठ है, सदा नहीं है, बदलते रहते हैं। सब संबंध अब एक से निभा ही नहीं सकते हैं। अपने अपनी माँ को बोल सकते हो क्या कुछ और? अपनी पत्नी को अपनी बच्ची को पत्नी बोल सकते हो? बहन बोल सकते हो क्या? माँ बोल सकते हो क्या? भाई बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते ना। उसको हम सब कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। कोई देहधारी से हम संबंध निभा नहीं सकते, हर संबंध निभा नहीं सकते। तो ये संबंध सदा है, सत्य है, और ड्रामा सत्य है। संसार रूपी नाटक में जो कर्म आपने कर दिया वो सत्य है, वो मिटेगा नहीं, मर्ज हो जाएगा। पाप कर्म कर दिया, मर्ज हो जाएगा, इमर्ज हो जाएगा। अभी हम तपस्या कर रहे हैं तो मर्ज हो जाएंगे सारे पाप कर्म, और फिर जब द्वापर युग आएगा वापस इमर्ज हो जाएंगे, है ना। जैसे सतयुग आएगा, हमारे अभी क्या हो रहे हैं? सतयुगी संस्कार, सतयुगी स्वभाव संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, और कलयुगी स्वभाव संस्कार मर्ज होते जा रहे हैं। कि तुम खत्म नहीं होते, कोई पाप कर्म खत्म नहीं होता है। विनाश होने का मतलब क्या है? मर्ज हो जाते हैं। नए संस्कार अभी हम बना रहे हैं, नए संस्कारों के नीचे दबते जाते, है ना। और फिर वापस जब द्वापर आएगा, एनर्जी कम हो जाएगी आत्मा की, आत्मा में सात्व गुण कम हो जाएंगे, तो वापस वो इमर्ज होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सत्य है। हाँ, राजयोग मेडिटेशन से क्या फायदा होता है कि राजयोग मेडिटेशन से जो ब्याज है ना, ब्याज हिसाब किताब खत्म होता है। अगर आप 100% राजयोग मेडिटेशन करते हो, जैसे बाबा ने बताया, श्रीमत पे चलते हो, उसमें मनमत और परमत मिक्स नहीं करते हो, मनुष्य मत मिक्स नहीं करते हो, 100% करते हो, सच्ची दिल से करते हो, साफ दिल से करते हो, तो वो ब्याज माफ हो जाता है। ब्याज माना 10 रुपया तो फिर भी देना पड़ेगा, कि तू 4,19,00,000 रुपया माफ हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपया देना सहज है कि नहीं है? 10 रुपया देना सहज है, मुश्किल है? 10 रुपया दे सकते हैं, इसलिए वो कर्म जो किया था ना गलत, वो तो हमें आज भी वापस करना ही पड़ेगा। हमने एक बार इंसल्ट की थी, एक बार इंसल्ट तो सहन करनी पड़ेगी। एक बार ग्रानी की थी, एक बार तो सहन करनी पड़ेगी। ठीक है, और किंतु जो रोज सुबह शाम कर रहे थे वो खत्म हो जाएगी। दुख, ऐसे दुख, हमें बीमारी थी ठीक ही नहीं हो रही थी, कैंसर हो गया, दवाई काम नहीं कर रही, कीमोथेरेपी काम नहीं कर रही, रेडियोथेरेपी काम नहीं कर रही, ऐसे कितने पेशेंट हमने देखे। उनको राजयोग मेडिटेशन कराया, यहां से 7 दिन करके गए, वही कीमोथेरेपी काम करनी शुरू हो गई। बीमारी जो सारी जगह फैल गई थी, दिमाग में, हफ्ते छाती में, लंग्स में, लीवर में, और जगह हड्डियों में भी वो बीमारी, वही दवाई काम करना शुरू कर दी और वो बीमारी खत्म हो गई। तो राजयोग मेडिटेशन से ये फायदा होगा, ब्याज खत्म, मूलधन रहेगा। ठीक है, तो तीन चारों चीज सत्य हैं। इन चारों का चारों को निरंतर अनुभव करते रहो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, इसको राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। अच्छा बताओ, हम सांस लेते हैं, नहीं लेते हैं? सभी सांस लेते हैं, सांस लेते हैं ना, तो सांस कितना लेते हैं हम? आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम लेते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन माना आधा घंटा सुबह योग किया, आधा घंटा शाम को, बहुत है? बोलो, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा अमृत वेला किया, आधा घंटा शाम को योग किया, सोते समय बाबा गुड नाइट, बस हो गया काम पूरा, ऐसे नहीं। ये राजयोग मेडिटेशन नहीं है। वो आधा घंटा सुबह शाम हम इंटेंस मेडिटेशन करते हैं, गहराई से अनुभव करने के लिए। अमृत वेला के समय विक्रम विनाश कर सकते हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति बना सकते हैं। ज्वाला स्वरूप माना सिर्फ एक संकल्प में स्थित हो जाना, बाबा, बाकी सब संकल्प खत्म। उस स्थिति में हमारे सारे विनाश, पुराने पाप कर्म मर्ज होने लगते हैं, विनाश होने लगते हैं, माना वो मर्ज होने लगते हैं। उसकी निशानी क्या? आज मैंने सुबह अमृत वेला किया, राजयोग किया, बहुत पावरफुल, एक ही संकल्प में टिक गया, परम धाम में जाके टिक गया बाबा के साथ, वो स्थिति में टिक गया। तो जैसे जिस व्यक्ति को देख के कल मुझे गुस्सा आया था, जिस व्यक्ति को देख के मुझे कुछ विचार चलते हैं, उसकी तरफ थोड़ी आकर्षण होती है, आज वही व्यक्ति मेरे सामने आएगा, मेरे को गुस्सा, वो बात ही भूल जाएगी, उसको देख के कोई विचार चलेगा ही नहीं, संकल्प नहीं चलेगा। इसे कहते हैं विक्रम विनाश करना। ऐसी स्थिति में रहने से, वहां पर परमधाम की स्थिति में रहने से वो मेरा विक्रम क्या हुआ आज, डिलीट हो गया। डिलीट माना मर्ज हो गया। आज मुझे वो देखिए आत्मा की याद आएगी, ये भी आत्मा है मैं भी आत्मा। अच्छा इसने कुछ किया था, इसने कल बोला था, वो कोई कहेगा ना तुमने, मैंने आई एम सॉरी कल मैंने गुस्सा किया था, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। ऐसे लगेगा कि मुझे याद ही नहीं आ रहा इसने कुछ किया था, बुद्धि से ही भूल जाएगा, मर्ज हो गया ना, पेज ही बदल गया है ना। अब पेज बदल गया तो क्या हुआ, उस पेज पे लिखा ही नहीं हुआ इसने गुस्सा किया था। तो ये फायदा होता है राइट। तो जितना इस एबीसीडी को हम एक्चुअली हमें चलते फिरते उठते बैठते हर काम खाना खाते भी हर समय ये अभ्यास रहना चाहिए। अब देखिए हम कैसे हैं, मुक्त अवस्था कैसे बनेगी। तो जितना हम राजयोग का अभ्यास करते जाएंगे, इस स्थिति का अभ्यास करते जाएंगे, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा उससे संबंध और डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे अपने कर्मों का परिणाम था, कोई दोषी नहीं है, और जो अब हो रहा है क्या हो रहा है, अभी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं अब क्या हूं, अब मैं बाबा की गोद में बैठा हूं। संगम युग बना क्या, बाबा ने मुझे शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा के राजयोग सिखा रहा है। ब्राह्मण जीवन का मतलब ये है, शूद्र से ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण बना शूद्र थे तो हमारी बुद्धि हद में थी, ब्राह्मण बना ब्राह्मणा बेहद, ब्राह्मण बना जिसकी बुद्धि और मन बेहद में रहे। बेहद माना क्या, एबीसीडी, आत्मा बेहद है, परमात्मा बेहद है, आत्मा परमात्मा के संबंध बेहद है, ड्रामा बेहद है। जिसकी बुद्धि में सदा एबीसीडी रहे वो है ब्राह्मण। अब मैं बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा माना कौन, शिव बाबा माना कौन, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम सुखानंद शक्तियों का सागर, मैं उसकी गोद में बैठा हूं। मैं आत्मा, सूक्ष्म शरीर माना क्या, पवित्र बुद्धि पवित्र मन। अब मैं आत्मा इस पवित्र बुद्धि पवित्र मन के साथ बाबा की गोद में बैठा हूं, सूक्ष्म वतन में बैठा हूं, क्योंकि मैं बाप का आज्ञाकारी बच्चा हूं, तो मैं बाबा की, ये है ब्राह्मण की स्थिति, ये है संगमिंग की स्थिति। बस ये सदा अनुभव होता रहे, मैं शुद्र से, मैं शुद्र था, शुद्र माना देह का भान, देह के संबंधों का भान, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों का भान मेरे अंदर, मेरी बुद्धि और मन में भरा हुआ था। अभी बाबा ने मुझे शुद्र से ब्राह्मण बना दिया, हद से बेहद में ले आया। देह हद है, देह के संबंध हद है, देह के स्वभाव संस्कार हद है, देह के पदार्थ हद में है, उससे बेहद में मेरी बुद्धि मन लग गया। मैं बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा मुझे राज्यों की पढ़ाई पढ़ा रहा है। बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो मेरी संतान हो, तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं, और डी फॉर ड्रामा, बच्चे जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब तुम मेरी गोद में हो, मैं तुम्हारे साथ सदा हूं, हर संबंध से तुम्हारे साथ हूं, हर जगह तुम्हारे साथ हूं, हर समय तुम्हारे साथ हूं, इसलिए अब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अब मैं तुम्हारे बाबा की श्रीमत पे हर कार्य कर रहा हूं, और जो होने वाला है आज शाम को, होने वाला क्या होने वाला है, आज शाम को क्या होने वाला है, बहुत अच्छा या बुरा, बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने बीज कौन सा बोया, अच्छा बीज बोया। आम का बीज बोया तो आम काटेंगे ना, आम मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले बबूल बोया था तो बबूल काट रहे थे, है ना, अब आम बो रहे तो आम ही मिलेगा ना। तो शाम को बहुत अच्छा, कल क्या होगा उससे भी अच्छा होगा, परसों क्या होगा उससे भी अच्छा होगा, और तरसों क्या होगा उससे, सत्ययुग में क्या होगा उसकी तो बात ही मत पूछो, क्या होगा, हीरे जवाहरात के महलों में रहेंगे, कंचन काया होगी, निरोगी जीवन होगा, 2500 साल कमाने की आवश्यकता नहीं, कोई दुखी नहीं होगा, है ना, मस्ती होगी, है ना, किसी बात की चिंता फिक्र खत्म, कोई रोग ही नहीं होगा, डॉक्टर ही नहीं होगा, कभी बूढ़े नहीं होंगे, है ना। तो ये जो स्थिति है ना, एबीसीडी का मनन चिंतन करते जाएंगे, उससे पवित्रता आती जाएगी, मन बुद्धि पवित्र होती जाएगी। पवित्रता माना क्या, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के सत्य बाप से कंबाइंड हो जाओ, सत्य बाप से कंबाइंड होकर सबको देखो, दूसरों को देखना, दूसरों के सत्य स्वरूप को देखना, खाली मैं आत्मा समझ के दूसरों आपको देखूं तो मेरे को आत्मा नजर नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास आत्मा एनर्जी नहीं है, कम है बहुत, किंतु बाप से कंबाइंड होकर के दूसरों के सत्य स्वरूप को देखो, अपने बच्चे को देखो, अपनी पत्नी को देखो, माँ बाप को देखो, भाई बहन को देखो, दोस्तों को देखो, बॉस को देखो, नौकरों को देखो, सत्य स्वरूप, वो भी आत्मा, नौकर भी आत्मा है, माँ भी आत्मा है, बाप भी आत्मा है, पत्नी भी आत्मा है, बेटा भी आत्मा है, बेटी भी आत्मा है, सत्य स्वरूप में, फिर सत्य रूप को देख करके सत्य स्वरूप में व्यवहार करना, और फिर ना किसी से लगाव, ना किसी के प्रति झुकाव, ना किसी के प्रति, ना किसी के प्रभाव में मत आओ, ना किसी लौकिक आत्मा के प्रभाव में आओ, ना किसी अलौकिक आत्मा के प्रभाव में आओ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, है ना। रिगार्ड सबको दो, आदर सबको दो, छोटों को भी बड़ों को भी, सम्मान सबका करो, किंतु सम्मान मेरे के सम्मान सबको दो, किंतु प्रभाव में किसी के नहीं आना। तो ये हमें, ये जो है लगाव झुकाव प्रभाव टकराव से में आना भी अपवित्रता है। अगर किसी से लगाव हो गया, किसी देहधारी से, किसी से झुकाव हो गया किसी की तरफ, किसी के प्रभाव में आ गए, किसी देहधारी के प्रभाव में आ, किसी के किसी के टकराव में आ गए, तो जब योग करने बैठो किसकी याद आएगी? वो लगाव वाले की याद आएगी। जिसके साथ झुकाव है वही वही याद आएगा, प्रभाव जो है वही याद आएगा, टकराव वाला याद आएगा। और फिर सृष्टि रूपी ड्रामा में जो भी आत्मा, हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, किसी के पार्ट को देख के क्या क्यों कैसे अब कब करना, ये भी क्या है, ये भी अपवित्रता है। ये वैसे संकल्प आए ना, ये भी अपवित्रता है। तो ड्रामा में जो भी, चाहे लौकिक परिवार में हो रहा है, चाहे अलौकिक परिवार में सेंटर पे हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी, शांतिवन में कुछ हुआ देखा, उसके बारे में क्या क्यों कैसे नहीं करना है, ये है पवित्रता की परिभाषा। ब्रह्मचारी तो बनना है, किंतु ब्रह्माचारी भी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया एक्यूरेट, वैसे करना, ये पवित्रता की परिभाषा। तो जितना इस ज्ञान का, ABCD का मनन चिंतन मंथन स्मरण करते जाओगे, उतना मन बुद्धि पवित्र होती जाएगी। और जब ऐसी बुद्धि बन जाएगी, मन बुद्धि इस ऐसी पवित्रता से, ज्ञान से पवित्रता आएगी, और पवित्रता से शांति आएगी। शांति माना अपने सत्य स्वरूप में, पहले ना पास्ट का चिंता ना भविष्य की चिंता। जब हम अपने ही साथियों में, अपने ही घर में, रिश्तेदारों में जब उनको देह के रूप में देखते, तो हमें उनका पास्ट याद आता है, भविष्य याद आता है, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने मेरे को ऐसा किया, भविष्य में क्या करेगा या क्या करेगी। तो शांति माना ना पास्ट का चिंतन ना भविष्य की चिंता, वर्तमान में अपने सत्य स्वरूप में स्थित होके सत्य बाप से कंबाइंड होकर सोचना। सत्य बाप से कंबाइंड होकर सोचो, कुछ भी सोचना है, सत्य बाप से कंबाइंड होकर देखना, सत्य बाप से कंबाइंड होकर पढ़ना, कुछ भी पढ़ना है, सत्य बाप से कंबाइंड होकर सुनना, सत्य बाप से कंबाइंड होकर बोलना, सत्य बाप से कंबाइंड होकर खाना, सत्य बाप से कंबाइंड होकर घर या ऑफिस में काम करना, सत्य बाप से कंबाइंड होकर के सुबह रोज सैर करना, सत्य बाप से कंबाइंड होकर सोना, ये है शांति। ये है शांति की परिभाषा, निरंतर बाप से कंबाइंड होकर रहना, शांति के सागर। उस बाबा को संकल्प आता ही नहीं, ना पास्ट का संकल्प आता, ना भविष्य का संकल्प आता, वर्तमान में भी जो कुछ होना होता है उसको टच होता है। कुछ बोलना हो, बाबा यहां भी आते जब, तो उनको टच होता है, बिना उसके बाबा बोलते नहीं, बाबा को संकल्प आते ही नहीं। तो वो है असीम शांति, परम शांति, ऐसी शांति। और जब ऐसी शांति आती है, ऐसी शांति से रूहानी प्यार पैदा होता है, रूहानी प्रेम पैदा। रूहानी प्रेम माना इस विश्व में हर आत्मा, कोई भी आत्मा है, उसके हर पार्ट को देखते हुए, हर पार्ट को, हर रोल को, उसमें आपका माता पिता भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, बॉस भी हो सकता है, उसका जो भी रोल निभा रहा है वो इस समय, जैसा भी रोल निभा रहा है, उस रोल को साक्षी हो, उस रोल को देखो, उस रोल को, उसको उसकी इंपॉर्टेंस दो, महत्व दो, और बिना शर्त के उसे आदर से स्वीकार करो। आदर स्वीकार करना, और फिर ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के अंदर रह के उसकी पालना करना, यह है रूहानी प्रेम। जैसे परमात्मा है, हम इस दुनिया में जो भी कोई कुछ कर रहा है, चाहे उसके बच्चे हैं BKs हैं, चाहे दूसरे हैं दुनिया वाले बच्चे हैं, कोई कुछ भी करता है, मान लो एग्जाम है, MBBS का एग्जाम है, तो बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, और एक बाबा का बच्चा वो पढ़ाई नहीं करता है, तो ये नहीं करता बाबा के, अपने बच्चे को, वो जो बाबा का बच्चा है उसको तो पास कर दे एग्जाम में, उसने पढ़ा नहीं, और उसको दूसरे जो बाहर का बच्चा है उसने बहुत मेहनत की उसको फेल कर दे, ऐसा नहीं। पास वो होगा फेल वो हो जाएगा। तो बाबा कोई भी आत्मा, चाहे वो आतंकवादी हो, डाकू हो, साधु हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितना भी खराब हो, कितना भी अच्छा हो, सबको एक नजर से उसके रोल को देखते हुए अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरीवन इन द यूनिवर्स, हर आत्मा को बिना शर्त के आदर से उसके रोल को स्वीकार करता है, सबको इंपॉर्टेंस देता है, किंतु ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के अंदर रह के देता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। हम क्या करते हैं, हम महत्व तो देते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं, किंतु फिर क्या करते हैं, मुंह के अंदर आके नियम मर्यादा तोड़ के उसको फिर पैसे देके पास कराते हैं। बच्चा पढ़ता नहीं तो क्या करते, पैसे देके पास कराते, नहीं कराते। तो ये जो है, ये है, ये रूहानी प्यार नहीं है। तो परमात्मा सबको एक्सेप्ट करता है, जजमेंटल नहीं होता हमारे लिए, ये ऐसा है ये ऐसा है, नहीं, कितना मर्जी पाप किया हो, कुछ भी किया हो, सबको स्वीकार कर लेता है। तो ये ऐसा रूहानी, हम सबको माफ करके ऊपर, जैसे ही हम शांति आई, जैसे शांति आई, पास्ट और भविष्य भूल गए, वर्तमान में बाबा से टिक गए, बाबा से कंबाइन हो गए और सबको सबको स्वीकार कर लिया। तो ये स्वीकार करते हैं, हम कहां पहुंच जाते हैं, सूक्ष्मतम में पहुंच जाते हैं, मतलब बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं। दुनिया से बुद्धि उठ गई ना, बुद्धि मन सबको माफ करके ऊपर उठ गए। तो ये जो स्थिति है पवित्रता शांति प्यार, ये स्थिति है मुक्त स्थिति, संगम युग में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति। मुक्त माना ना किसी से कोई बंधन है, किसी से लगाव झुकाव टकराव है, ना ड्रामा में क्या क्यों कैसे है, और ना पास्ट का चिंता, ना भविष्य की चिंता है, और सबको हमने स्वीकार कर लिया, सबके ड्रामा पार्ट से खुश हैं, संतुष्ट हैं। तो हमें क्या हो गया, हम बाबा के जैसे, ऐसा फील होता है जैसे सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने पहुंच गए, बाबा की गोद में पहुंच गए, अब लगता है बाबा मेरा है, जैसे बाबा कह रहे बच्चे आओ, बच्चे आओ मेरी गोद में आ जाओ। ब्रह्मा बाबा बैठा ना वहां पे, ब्रह्मा बाबा क्या है, पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार, और सातों गुणों का सागर शिव बाबा उसके दिल में बैठा है, बाप दादा। अब लगता है बाबा कह रहे आओ बच्चे आओ मेरी गोद में आ जाओ। ये है अतीन्द्रिय सुख की स्थिति, ये अतीन्द्रिय सुख की स्थिति। और फिर आनंद, आनंद माना आत्मा देह और देह की दुनिया के बंधन के पार चली जाए, बाबा के प्यार में खो गई, लवलीन हो गई, ये स्थिति आनंद की स्थिति है। ये जो स्थिति है अतीन्द्रिय सुख आनंद की स्थिति, ये जीवन मुक्त स्थिति है। हर कार्य करते, कुछ भी करते, ये स्थिति हमें अनुभव होती रहे, अतीन्द्रिय सुख और आनंद माना सदा बाबा की गोद, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बाबा मुझे कह रहा है आओ बच्चे मेरी गोद में आ जाओ, बच्चे कैसे, बच्चे सब ठीक है, बच्चे बाबा की गोद में समाये हुए हैं, संकल्पित नहीं चल रहे हैं, है ना, हर बात के लिए बाबा डायरेक्शन दे रहा है, बाबा हर राय, हर कदम पे राय दे रहा है, हर चीज के लिए बाबा से राय ले रहे हैं। ये है जीवन मुक्त स्थिति, कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, हमेशा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं, आनंद के झूले में झूल रहे हैं, और सर्वशक्तियां। जब ऐसे अतीन्द्रिय सुख आनंद की स्थिति हो गई तो प्रकृति शक्ति आ गई, प्रकृति शक्ति माना अब सत्य को प्रकृति शक्ति आ गई, जिसे कहते हैं विवेक, अब मेरा विवेक जागृत हो गया, अब मैं सत्य को परख लिया मैंने कि मेरा कौन सत्य कौन है, मेरा कौन है, मैं आत्मा हूं, मेरा सब शिव बाबा है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई है ना, फिर कोई चीज का त्याग करना मुझे मुश्किल नहीं है, बस बाबा मिल गया मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया जाती जाए है ना, संबंध जाते जाए, कुछ भी होता जाए है ना, पैसा जाता जाए, कोई बात कोई फिक्र नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज की चिंता नहीं, दे जाते जाए, दे में बीमारी है जाए, रहे या जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसी स्थिति, ये है जीवन मुक्त स्थिति। सत्य को विवेक जागृत हो गया, सत्य को परखने शक्ति आ गई, सत्य निर्णय करने शक्ति आ गई, अब मुझे यही करना है, मुझे अमृत वेला उठना ही है, कुछ भी हो जाए, रात को 12 बजे भी सोया तो भी 4:30 उठना ही है, क्योंकि 5 मिनट आनंद की स्थिति 5 घंटे नींद के बराबर है। ये नहीं कि मैं सो जाऊं थोड़ी और फ्रेश हो जाऊंगा, ना ना फ्रेश नहीं होंगे, 2 बजे सोए तो भी 3:30 उठ के योग करना ही है, क्योंकि वो जो 6 मिनट योग किया ना पावरफुल बाबा की गोद वाला, तो 6 घंटे की नींद बराबर हो गई। तो वो करना है कि सोना है, बताओ سنا ہے کہ امرت ویلا یوگ کریں گے نہیں کریں گے؟ نرنے کر لیا نا مجھے کرنا ہی ہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے مرلی جانا ہی ہے کچھ بھی ہو جائے، مکان ٹوٹ گئے بھوکمپ آ گیا صبح 6 بجے تو بھی ٹوٹے مکان کے اوپر سے جا کے سینٹر پہ پہنچنا ہی ہے، مکان رات کو ٹوٹ گیا تو ٹوٹے مکان پہ بیٹھ کے امرت ویلا یوگ کرنا ہے، ایسا نرنے کر لیا ٹھیک ہے، دنیا جاتی جائے کہ میں آتما تو زندہ ہوں نا، اور میں تو مکان میں دب ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں دب سکتا؟ کیونکہ بابا میرے ساتھ ہے، جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں تو مکان گرے گا ہی نہیں، سنا پرکرتی کی ہمت نہیں میرے کو میرے نہیں دبا دے میرے کو نا، جیسی استھتی نشے والا ہوگا نا اس کو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسا ابھیاس ستیہ کو پرکھنے شکتی، ستیہ نرنے کرنے شکتی، اور اس کے لیے وستار کو سار میں لانے شکتی، مطلب پہاڑ کو رائی بنانے کی شکتی، کتنی بڑی سمسیا آ جائے پہاڑ رائی بن جائے، اور سمیٹنے کی شکتی، من بدھی سمیٹ کے بابا کی گود میں بابا کی یاد میں لگا دیا، اس دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے ٹھیک ہے، اور پھر جب ایسی استھتی ہو گئی تو پھر ہمارے اندر کیا آ گیا، بابا سے کنیکشن لگا ہوا ہے، اب دیہ کھینچ رہی ہے نیچے، دیہ کے وکرم ہے، سمبندوں میں کچھ حساب کتاب ہے، تو سہن کرنے کی شکتی آ گئی، کیونکہ بابا سے کنیکشن لگا ہوا ہے، دیہ کھینچ رہی ہے نیچے، سمبندھ کھینچ رہے نیچے، دیکھے پدارتھ نیچے کھینچ رہے ہیں، تو بھی جو کچھ بھی ہوا دے کے ساتھ سمبندوں میں سہن کرنے کی شکتی آ گئی، سہن کرنے کی شکتی آئی، اب سمانے کی شکتی بھی آ گئی، پھر ہم گائن نہیں کرتے میں نے اتنا سہن کیا، میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، گائن سما لیتے ہیں، یوگی سما لیتے ہیں، کیونکہ ساگر سے کنیکشن ہے نا، اور پھر سامنا کرنے کی شکتی آ گئی، اور نئی پرابلم آ رہی ہے کیونکہ حساب کتاب بہت کیے ہوئے ہیں، تیسرے جنم میں بہت پاپ کیے ہوئے ہیں، اور پرابلمز آ رہی ہیں، اور سمسیاں آ رہی ہیں، اس کو بھی سامنا کر لیا، اور جب سامنا کر لیا تو پھر کسی نے مجھ سے سہیوگ مانگا تو سہیوگ بھی کر دیا، تو 8 شکتیاں اس طرح سے آ گئی، تو یہ استھتی اتیندر سکھ آنند اور سب شکتیاں میرے اندر آ جانا، یہ استھتی جو ہے نا اس میں استدا رہنا، یہ ہے جیون مکھ استھتی، سنگم یوگی جیون مکھ استھتی، کہ ہمیشہ ساتوں گن ایسے بھرپور فیل ہوں گے، ستو پردانتا کی فیلنگ آئے گی، لائٹ کا تاج ابھی ہی فیل ہوگا، لائٹ کا تاج میرے پاس پاس چاروں طرف آوا منڈل آ جائے گا، اور وشو کلیان کی ذمہ داری کا تاج، کہیں بھی میں ہوں سارے وشو میں اپنے آپ کیا ہوتا رہے گا، کیا ہوگا، وائبریشنز، اور ہمارا وایو منڈل، اور پھر میرے من میں سب کے پرتی شبھ بھاونا ہے، شبھ کامنا ہے، تو شبھ وائبریشن سارے وشو میں ہر آتما کو ٹچ ہوں گے، جو آتمائیں بابا کو یاد کر رہی ہیں، اور میرے سنکلپ پاون شریش شکتیشالی اور کلیانکاری ہوں گے، اور وہ ان پاون شریش شکتیشالی کلیانکاری سنکلپوں سے ایک نئی پرکرتی کا نرمان ہر آتما کو ٹچ ہوں گے، جو بھی آتمائیں آئی سی یو میں سی سی یو میں دکھ ہیں، بیمار ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں، بابا کو یاد کرے کسی کارن سے کسی روپ میں یاد کریں، چاہے ہندو مسجد سکھ عیسائی جو بھی ہوں، کسی بھی کارن جو کنیکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرماتما کو، ان کو ٹچ ہوگا انت میں، کیونکہ سب جگہ وناش ہو رہا ہوگا تو سب آتمائیں پرماتما کو یاد کری ہوں گی، اسے سب کو ٹچ ہوگا رائٹ، تو اس طرح سے آٹومیٹک منسا سیوا ہوتی رہے گی، تو اس طرح سے یہ استھتی ہے، تو یہ استھتی نرنتر منن چنتن منتھن سمرن بابا کی مرلی کا کرتے رہو، اے بی سی ڈی کا منن چنتن منتھن سمرن کرتے رہو، تو اپنے آپ سنگم کی مکت اوستھا مانا، پوترتا شانتی اور روحانی پیار، ایسی استھتی کو کہتے ہیں مکت جیون، اور یا مکتی مانا گتی ہو گئی، مطلب شانتی دھام میں بدھی لگی رہے گی، بابا میں بدھی لگی رہے گی، اور کیونکہ دونوں تینوں کمبائنڈ استھتی ہیں، اور اتیندر سکھ آنند اور شکتیوں کی انوبھوتی ہوتے رہنا، یہ استھتی جو ہے اتیندر سکھ کی انوبھوتی ہے، ارتھات آنند کی انوبھوتی، شکتیوں کی انوبھوتی، یہ استھتی جیون مکت استھتی ہے، سنگم یوگ کی جیون مکت استھتی ہے، جس کے دوارا اس دنیا میں رہتے بھی ہمیں ایسا لگے گا جیسے ہم بابا کی گود میں ہیں، ہم سدا سوکشم وطن میں ہیں، اور ہمیں آٹومیٹک ستیو کے نظارے، ستیو آنے والے ستیو کے نظارے، اپنے محل، اپنا آنے والا پرنس پرنسس کا سوروپ ہمیشہ آٹومیٹک یاد، سین سینریاں ہمیشہ یاد آتی رہے، اپنے آپ دکھائی ساکشاتکار ہوتے رہیں گے، اور منسا سیوا بھی آٹومیٹک ہوتی رہے گی، اوم شانتی۔